कर्तृत्व की चर्चा के अंतर्गत साक्षियों कर्तव्यपन की चर्चा के अंतर्गत आप जिससे निवेदन किया जा रहा था कि ये कर्तृत्व मैं और मेरा में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, आज इन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा शास्त्र इन दो शब्दों की बड़ी गहरी निंदा करते हैं। ये दो शब्द ही हमारे जीवन में बंधन के कारण है। इन दो से जो मुक्त हो जाता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, मोक्ष का पात्र बन जाता है। मोक्ष तो मरण के बाद कहा जाता है, वह तो यहीं पर जीवन मुक्त हो जाता है। एक आदि दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सज्जन दिल्ली से गाड़ी में एक बक्सा रख के तो बाहर चले गए हैं, किसी को कहा जीटी एक्सप्रेस में उन्होंने मद्रास जाना है। कहा भाई इस बक्से का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर बाहर होगी तो अभी आता हूं। व्यक्ति उस बक्से पर जैसा कि कहा नजर रखी, गाड़ी चल पड़ी, व्यक्ति आया नहीं है। गाड़ी मथुरा भी निकल गई, आगरा भी निकल गई, व्यक्ति आया नहीं है। उसके बाद टिकट चेक करने वाला व्यक्ति आया है, चेक कराया है, उसने पूछा ये बक्सा किसका है। इस व्यक्ति ने झट से कहा कि वह तो अभी आया नहीं, इस बक्से का मालिक बहुत दूर हम निकल चुके हैं, अतएव उसे इतना ही कहा कि ये बक्सा मेरा है। उसको हिला के देखा, काफी भारा था। कहा इस बुकिंग आपने करवाई हुई है, एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दिए हुए हैं कि नहीं जी? तो उसने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे मांगे और पर्ची सीट काट के उसके हवाले दे दी, उसके ऊपर उसके टिकट का नंबर लिख दिया। गाड़ी चलती रही साक्षरों, एक दिन बाद, डेढ़ दिन बाद, जितने दिन के बाद वो मद्रास पहुंचती है, गाड़ी मद्रास पहुंची। मद्रास पहुंची तो जैसे ही गेट से उतरे बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को सूचना मिल चुकी हुई थी कि एक बक्सा दिल्ली से इस प्रकार का आ रहा है। उस बक्से में क्या है पुलिस को तो पता है, लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है कि इस बक्से में क्या है। बस सिर्फ इतना ही दोष है इसका कि उस पर अपनी मोहर लगा दी, अपना ना होते हुए कि उस बक्से को कहा है कि ये मेरा है। बक्सा कुली ने बाहर उतारा, भारी था। पुलिस ने पूछा ये किसका है बक्सा, व्यक्ति ने कहा मेरा है। बुकिंग करवाई हुई है कि हाँ करवाई है, सब कुछ कन्फर्म कर लिया, रसीद देखी, उस पर टिकट नंबर इत्यादि देखा और हथकड़ी फांसी थी, दोनों हाथ उसके बांधिए चलिएगा। उस बक्से में साधिक्षणों एक लाश थी, किसी मरे हुए व्यक्ति, बच्चा है, जवान है, परमात्मा जाने, लाश थी। क्या दोष हुआ, हत्या लगने का क्या कारण था? सिर्फ यही ना, अपना ना होते हुए बक्से को अपना कहा है। इस व्यक्ति ने तो दीदी एक बक्से को अपना कहा है। हम किस किस चीज को अपना कहते हैं, अपनी ना होते हुए, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, सब परमात्मा का है। और यहां पर परमात्मा के अतिरिक्त किसी चीज का, किसी व्यक्ति का कोई मालिक नहीं है, हम मालिक बने बैठे हैं। एक के मालिक बने, एक बक्से के मालिक बने तो लगी हथकड़ी। अनेक चीजों के मालिक हम ना होते हुए मालिक बने बैठे हुए हैं, इसी के कारण हथकड़ियां भी लगी हुई हैं, इसी के कारण पांव में बेड़ियां भी पड़ी हुई हैं, इसी को बंधन कहा जाता है। यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है, ये मैं और मेरा मन ही बंधन का कारण है। सिर्फ मैं की, मेरे की स्टैंप लगी तो हथकड़ी लग गई। कल्पना कीजिएगा साधक, गांव में किसी के पास गाय है, दूध देती है, उसके चारे की चिंता है, घास लाना है, सर्दियों के लिए घास इकट्ठा करके रखना है, घास मिलेगा नहीं, थोड़ी बीमार हो जाती है, बर्फ भी क्यों ना पड़ी हुई हो तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मन उस गाय के साथ साथ अनेक सारी चिंताएं जुड़ी हुई है, आज दूध कम क्यों दिया है इस बात की चिंता हो जाती है, आज दूध नहीं दिया है इस बात की चिंता हो जाती है, कई सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों? अपनी है। आप उस गाय को बेच देते हो, उस घर में जाके मर जाती है, आपके सिर पर जूं भी नहीं रिंगती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब वो अपनी नहीं रही है। जब तक अपनी थी तो चिंता बनी हुई थी, सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ था। मान जितने भी दुख और सुख व्यक्ति आप अनुभव कर सकता है, वे सिर्फ उसके कारण कि ये गाय मेरी है। एक खेत है, किसान उस खेत को तैयार करता है, खाद इत्यादि डालता है, बीज बोता है, वर्षा नहीं हुई तो चिंता की वर्षा नहीं हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। थोड़ा अंकुरित हुआ, थोड़ा पौधा बड़ा हुआ, फिर वर्षा की आवश्यकता है, फिर परमात्मा से मांग की जाती है। यदि सिंचाई के साधन नहीं है तो परमात्मा ही सिंचाई देगा, वही पानी देगा, उसी पर निर्भर। तो इस बात की चिंता की कब वर्षा होगी, वर्षा नहीं हुई ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, चिंता। मानो हर प्रसन्नता, हर्ष, अमर्ष सब उसी के साथ जुड़ा हुआ। क्यों? खेत अपना है, खेती अच्छी हो, उपज अच्छी हो, ये अपेक्षा है, इसलिए आदमी उसके लिए सब कुछ करता है। बीज भी अच्छी जगह से लाता है, कीमती बीज लाता है, सुपीरियर बीज लाता है, ताकि मुझे उपज अच्छी उसकी मिले। दो साल तक, चार साल तक उस खेत को अपना मान के तो वह बोता है, उसकी फसल खाता है इत्यादि। कालांतर में सरकार इधर उधर थोड़ा निरीक्षण करती है, पता लगता है कि ये जगह अपनी नहीं थी, हमने गलत अधिकार इस पर जमाया हुआ था। सरकार उस जमीन को छीन लेती है। अब ना उपज की चिंता है, ना उसे बोने की चिंता है, ना उसकी खुदाई की चिंता है, ना निदाई की, किसी चीज की चिंता नहीं। क्यों? अब वो जमीन अपनी नहीं रही। तो यू कहो देवियो सज्जनों, सारी की सारी चिंताएं, दुख कहो, दुख अधिक सुख कम, बहुत सुख तो बहुत कहीं कहीं मिलता है, पर दुख तो सदा ही बना रहता है। पौधे पर देवियो, फूल तो कभी कभी आते हैं, कांटे तो सदा ही रहते हैं, यही हमारे जीवनों का हाल है। फूल तो कभी कभी जीवन में खिलते हैं, सुख के क्षण तो कभी कभी आते हैं, दुख तो सदा ही साथी है, दुख तो हर वक्त हमारी परिक्रमा लेता है, वह हमें छोड़ता ही नहीं है। किसी न किसी कारण से अपने अपने कारण, अपनों के कारण, जहां भी आपने अपनेपन की मोहर लगा दी, मेरेपन की मोहर लगा दी, अपने ऊपर मोहर है तो दुख का कारण, अपनों के ऊपर मोहर लगा दी मेरा पुत्र तो दुख का कारण, जहां आपने मैं और मेरेपन की मोहर लगा दी, वहां देवियो सज्जनो दुख आके रहेगा, शोक आके रहेगा, चिंता तनाव इत्यादि सब कुछ आके रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, बंधन बन के रहेगा। मैं क्या है, ये तो मेरा है, जहां मेरापन होगा वहां मैं, किसका किसका मेरा, कौन है जिसका ये मेरा है, मैं, तो जहां मेरापन होगा वहां मैं भी होगा। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं, शास्त्र इन्हें अहंता और ममता कहता है। आप मैं और मेरा साधारण है, समझने में आसानी, याद रखने में आसानी, अहंता ममता शास्त्र के शब्द हैं, वो भी कठिन नहीं है। अहंता मैं, ममता मेरापन, ये मैं क्या है? पानी है, आप कभी साबुन से कपड़े धोते हैं तो एक पानी का बुदबुदा सा बन जाता है, गोला सा बन जाता है, जैसे जैसे बैलून होता है ऐसा बन जाता है, उसे पानी का बुदबुदा कहा जाता है। क्या अस्तित्व है उसका, थोड़ी देर के बाद हट जाता है, खत्म हो जाता है। संत महात्मा समझाते हैं उस पानी के बुदबुदे का तो कुछ समय के लिए अस्तित्व है, इंसानी जिंदगी का तो उतना भी अस्तित्व नहीं है। कब हवा निकल जाएगी, कब ही फट जाएगा, कोई पता नहीं है। उसका तो कुछ होता होगा कि इतने समय के बाद साइज के मुताबिक, उसकी गहराई के मुताबिक वह इतनी देर के बाद फटेगा, लेकिन इंसान की जिंदगी का, इंसान रूपी बुदबुदे का तो कुछ पता ही नहीं है। वह बुदबुदा जब अपने आप को पानी से अलग समझने लग जाए, पानी का ही बना हुआ है, तो उसे मैं कहा जाता है, उसे अहंता कहा जाता है, उसे अहम कहा जाता है। सागर कभी देखो, नदी देखो, सागर देखो, सागर में लहर उठती है, पानी की बनी हुई होती है, लहर और कुछ नहीं है। पानी ऊपर उठा तो उसे लहर कहा जाता है। सागर का पानी ने उछाला मारा तो उसे लहर कहा जाता है। लहर यदि अपने आप को सागर से अलग समझने लग जाए, भिन्न समझने लग जाए, तो इसे अविद्या कहा जाता है, इसे अहम कहा जाता है। उसका अस्तित्व सागर से भिन्न नहीं है। अपने आप को देवी सज्जनों भिन्न मानना परमात्मा से, यही मैं है, यही अहंता है और यही अविद्या है। कहते हैं परमात्मा के महल के द्वार पर इस मैं का ताला लगा हुआ है, जो इसको तोड़ देता है वही प्रवेश पा सकता है, कोई दूसरा प्रवेश नहीं पा सकता। ब्रह्मोत्तर ताला लगा हुआ है, इसको तोड़ना है, इसको खोलना है, तब परमात्मा के महल में प्रवेश मिलता है। तो यूं कहो ना देवियों सज्जनों, एक जिंदगी का एक ही सिलेबस, एक ही लक्ष्य रह गया ना, इस मैं को तोड़ना है। इस मैं रूपी ताले को हमने तोड़ना है और कहना क्या है, मैं कुछ नहीं परमात्मा, सब कुछ तू है, मेरा कुछ नहीं परमात्मा, सब कुछ तेरा है। तो इससे मैं और मेरा दोनों कबर हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है सब तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। तो इससे मैं और मेरा दोनों के दोनों नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मैं और मेरा तो बंधन का कारण हो गया, और जीवन में तू और तेरा आ गया, बस गया, तो ये मोक्ष का साधन बन जाता है। संतों महात्माओं के स्लोगन देखिए, उनकी रिसर्च देखिएगा, इतनी सी रिसर्च, महर्षि व्यास देव के ये शब्द, सुंदर शब्द आज तक कोई इनको चैलेंज नहीं कर पाया। बिल्कुल वही के वही शब्द इतने सार्थक हैं, जो महर्षि व्यास देव के वक्त सार्थक थे वही शब्द आज भी सार्थक है। मैं और मेरा बंधन का कारण, तू और तेरा मोक्ष का साधन। और एक तपस्वी, एक बहुत अच्छा भक्त साधक परमात्मा के द्वार पर गया है, जाके द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? मैं कहा, मैं भाई ये जगह इतनी छोटी है, यहां एक ही रह सकता है, मैं या तू, दो नहीं रह सकते। द्वार नहीं खुला, द्वार बंद, व्यक्ति कि कुछ मस्तक में खटका, मानो परमात्मा ने ये बोध दे के तो कृपा तो कर दी, यह दो नहीं रह सकते। एक घर में तो मैं करने वाले अनेक रहते हैं, शरीर के घर में, लेकिन परमात्मा के घर में ये दो नहीं रह सकते। ये उसका विधान है इस प्रकार का, एक ही रह सकता है। गया पुनः जाके अनेक वर्ष तक साधन, अपने आप को परमेश्वर के कुर्म के समर्पित कर दिया। उस समर्पण के बाद परिणाम क्या निकला? मैं नष्ट हो गई, मैं मर गई, अब एक तू ही तू रह गया है। आज फिर हिम्मत करके तो द्वार पर दस्तक दिया है, पुनः भी अवस कौन है बाहर? आज साधु कहता है तेरे सिवा और कौन हो सकता है। द्वार खुला, भीतर आ जा। बाहर मैं का ताला, बड़ा मोटा ताला लगा हुआ है, इसे नष्ट किए बिना, इसे खोले बिना, इसे तोड़े बिना भगवान के महल में, भगवान के घर में प्रवेश नहीं मिलता। अपने घर में तो मिलता है, शरीर के घर में। अपने आप को शरीर बनना वह चेतन है और देह जड़ है। अपने आप को जड़ बनना चेतन होते हुए भी सबसे बड़ी अविद्या है। अविद्या सारे दुखों की जननी, मैं और मेरा सारे दुखों की जड़, और कुछ मैं और मेरा, इसी के कारण सारे के सारे दुख पैदा होते हैं। दुखों की उत्पत्ति कहां से? मैं और मेरा से। सोच विचार करके देखना बेटा, अनुसंधान करना, सोते वक्त थोड़ा बैठना, चिंतन करना कि आज इस प्रकार का कहा गया है, ये मैं और मेरे के कारण ही सारे दुख हैं। क्या बात है इसकी, क्या अर्थ है इसका, क्या अभिप्राय है इसका? आज एक मित्र दूसरे मित्र को मिलने के लिए गया है, दोनों साधु हैं, दोनों साधु बड़े पुराने मित्र, अनेक वर्षों के बाद मिले, पर घनिष्ठता इतनी कि आगंतुक मित्र को, आने वाले मित्र को विश्वास है कि मुझे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, मात्र मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज ही मेरा भीतर वाला मित्र पहचान जाएगा तो मैं कौन। जाके द्वार खटखटाया, कुटिया का द्वार था, खटखटाया, कई जा रहे थे, सोचा मित्र को मिले हुए बहुत देर हो गई है, आज थोड़े समय के लिए इन्हें मिलता हूं, बैठता हूं इनके पास। कौन है भाई? बहर मैं मानो अपना कुछ इंट्रोडक्शन और देने की जरूरत नहीं, इस मैं रूपी आवाज से ही पहचान जाएगा कि ये वो मेरा पुराना मित्र इतनी देर के बाद मेरे पास आया है। द्वार खोले पर द्वार खुलने, थोड़ी देर के बाद फिर द्वार खटखटाया, अरे मित्र द्वार क्यों नहीं खोलते? भीतर से कोई आवाज नहीं, ना ही द्वार खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि मित्र ने आवाज नहीं सुनी, क्यों? पहले बातचीत हो चुके, फिर द्वार खटखटाया, फिर द्वार खटखटाया। गुस्से में इसने कहा, अरे मित्र पहचानते हुए भी तुम मुझे द्वार क्यों नहीं खोल रहे मेरे लिए? क्या कारण है? मैं हूं, तुझे अभी भी पहचाना कि नहीं पहचाना? भीतर से आवाज आई, कौन मूर्ख है जो अपने आप को मैं कह रहा है? मैंने तो सोचा था परमात्मा के सिवा और किसी को मैं कहने का अधिकार नहीं, एक अस्तित्व परमात्मा का इस संसार में और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। ये दूसरी मैं कहां से आ गई? ये दूसरा मैं कहने वाला कहां से आ गया परमात्मा के सिवा? कुछ मित्र तो ठीक कहता है, एक परमात्मा के सिवा और किसी का अस्तित्व। सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है रा, सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है रा, सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है रा, सब कुछ तेरा है, तेरा है, तेरा है रा, it's
सबको